सुप्रभात की। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का दसम स्कंद का अध्याय सातवां और श्लोक संख्या नंबर 25 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। रुदितम् अनुनिशमय तत्र गोप्य वृषम् अनुतप्त दिया अश्रुपूर्णमुख्य अनुपलभ्य नंदसूनम् पवने उपारत पंसुवर्यवेग रुधिम अनुसम्य तत्र गोप्यो रुदितम् अनुसम्य तत्र गोपो वृषम् अनुपत्त दियो अश्रुपूर्णमुख्य वृषम् अनुपत्य दियो अश्रुपूर्णमुख्य रुरुधुरनुपलभ्यानन्दसूनम् गुरुधूरनुफलभ्यनन्दसूनुम् पवन उपार्थ पांसुवर्यवेग पवन उपार्थ पांसुवर्यवेग रुदितमनुशम्य तत्र गोप्यो रुदितमनुशम्य तत्र गोपो अपृशम मनुपत्यमियो अश्रुपूर्ण मुख्य वृषम मनुपत्यदियोश्रुपूर्ण मुख्य गुरुथुरनुफलभ्यानन्द सूनु गुरुधुरनुफलभ्यानन्द सूनु पवनोपारत पांशुवर्षवेघ पवनोपारत पांशुवर्षवेघ तो इसके पहले के कुछ अनुवाद इस प्रकार है, वो पढ़कर हम अभी केस में चर्चा करेंगे। तो 22 से अनुवाद इस प्रकार है। क्षण भर के लिए समूचा चरागा भूल भारी अंदर के घने अंधकार से ढक गया और माता यशोदा अपने पुत्र को उस स्थान में न पा सकी जहां से बिठाया था। 23वां अनुवाद। तृणावर्त द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण लोग न तो स्वयं को देख सकते थे न अन्य किसी को, इस तरह वे मोहित तथा विचलित थे। 24वां प्रबल बंदर से उठी धूल के कारण माता यशोदा न तो अपने पुत्र का कोई पता लगा सकी न ही कोई कारण समझ पाई। वे जमीन पर इस तरह गिर पड़ी मानो किसी गाय ने अपने बछड़ा को खो दिया गया हो। वो अत्यंत करुणा भाव से विलाप करने लगी। आज का शब्दार्थ इस प्रकार है। रुदम करुणा पूर्वक रोती हुई यशोदा अनुनिशेम्य सुनकर तत्र वहाँ गोप्य अन्य गोपिया वृषम अत्याधिक अनुतप्त माता यशोदा के साथ विलाप करती दिया ऐसी भावनाओं से अश्रुपूर्ण मुख्य तथा अश्रुओं से पूरित मुखों वाली अन्य गोपियां रुरुधु रो रही थी अनुपलाभ्य न पाकर नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को पवने बबंडर के उपराध बंद हो जाने पर पांचु वर्ष वेगे धूल की वर्षाओं के वेग से अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जब अंधड़ तथा बबंडर का वेग घट गया तो यशोदा का करुण ग्रंथ सुनकर उसकी सखिया गोपिया उनके पास आई, किंतु वे भी कृष्ण को वहां न देखकर अत्यंत घृण हुई और माता यशोदा के साथ आंखों में आंसू भर कर रोने लगी। तात्पर्य, कृष्ण के प्रति गोपियों की अनुरक्ति विलक्षण तथा दिव्य है। गोपियों के सारे कार्यकलापों के केंद्र कृष्ण थे। कृष्ण के रहने पर वे सुखी रहती थी, किंतु उसके पास न होने पर वे दुखी थी। इस तरह जब माता यशोदा कृष्ण के जाने से विलाप कर रही थी तो अन्य स्त्रियों भी रोने लगी। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामीयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरु श्री उद्भव कमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं संसदीपं सात्वैतं सात्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्कृते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गराधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहां पर आज के इस प्रसंग में तृणावर्त भगवान श्री कृष्ण को उठाकर ले चले गए। तो वायु की तेज वेग से भवंडर के प्रभाव से उन्होंने ऐसे धूल को वृंदावन में बिखेर दिया, जिस कारण से लोग दूसरे को तो छोड़िए अपने आप को भी नहीं देख पा रहे थे। और जब ये कुछ समय के लिए जब शांत हुआ, यशोदा मैया ने जब देखा कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण को जिस स्थान पर रखी थी उस स्थान पर अब कृष्ण दोबारा प्राप्त नहीं हो रहे थे, ये देखते ही यशोदा मैया बहुत ही क्षीण हुई और विलाप होकर वो गिर पड़ी। जैसे वर्णन किया गया, जैसे कि बछड़ा जब गाय अपने बछड़े को खो देता है तो किस प्रकार गाय विलाप करती है, वैसी अवस्था यहाँ पर हो गई। और अन्य गोपियां भी वहां पर उस स्थान पर इकट्ठा हुई, तो उन्होंने भी देखा कृष्ण इस स्थान पर नहीं और यशोदा मैया रो रही है। इस दृश्य को देखकर अन्य गोपियां भी रोने लगी। तो बड़ा ही सुंदर यहां पर वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार यशोदा मैया और अन्य गोपियों के चित्त में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना अगाढ़ प्रेम था। और वो प्रेम के वशीभूत उन लोग इतने आसक्त थे कृष्ण के प्रति कि जब वही वस्तु जब खो गया तब उन्हें शोक में डुबा दिया या दुख में डुबा दिया। तो ये जो आध्यात्मिक जो शोक और ये जो विलाप है उसको हम भौतिक दृष्टि से नहीं समझ सकते, भौतिक दृष्टियों से नहीं देख सकते, क्योंकि भौतिक जो शोक और विलाप है उसमें और आध्यात्मिक में जमीन आसमान का भेद है। लेकिन हाँ, आसक्ति का परिणाम ये जरूर होता है, जब भी किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति का आसक्ति होता है या वस्तु या व्यक्ति, व्यक्ति का आसक्ति यही दो वस्तु से होता है, और वो वस्तु या व्यक्ति अगर जब उसके उसके पास से जब खो जाता है तो परिणाम होता है दुख, या उससे केवल कष्ट ही भोगना पड़ता है क्योंकि वो वस्तु उसके हाथ में अब नहीं है। वो अंततः अथवा उसका परिणाम होता है रोना। सार्वभौमा प्रभु इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण रूप में बताते हैं। वो बताते हैं कि ये जो आसक्ति जो है वो दुख का परिणाम व्यक्त करता है, वो अंततः गत्वा उसे दुख में डुबा देता है। तो वो उदाहरण बताते हुए बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, वो जा रहा था भार्गव, तो भार्गव जा रहा था तो उन्होंने अपने गाय को संभालने के लिए पड़ोसियों को सौंप दिया और पड़ोसियों को कहा कि मेरे गाय की रखवाली करना, मैं कुछ समय के लिए बाहर जाकर आऊंगा। तो बोला ठीक है, और ऐसे कहकर उन्होंने उस गाय को उनके हवाले कर वो चले गए। तो कुछ महीने तक अब इस गाय का देखभाल इनका पड़ोसी कर रहा था, लेकिन होता यूं था जितने भी गाय जो भी कुछ दूध देती थी वो सारे दूध को ये क्या करता था, ये सारे कुत्ते को पिला देता था। वो जितना भी गाय दूध देती थी सारा दूध कुत्ते को पिला दिया जाता था। अब घर की जो भाग्यवती थी वो तो देखकर वर्षण करने लगी और चिल्लाने लगी कि ये क्या कर रहे हो, ये दूध जो गाय का दूध हमें पीना चाहिए और तुम्हें कुत्ते को पिला रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। तो उसके पति देव कहते थे भाग्यवती आपको वक्त आएगा तो समझ में आ जाएगा, आप निश्चिंत रहो। कुछ महीना बीत गया ऐसे ही, और ये बंदा जो था गाय का मालिक को दोबारा लौट कर आया और उन्होंने कहा कि मेरा गाय का, बोला लेकर जाइए। तो उन्होंने गाय को लेकर जाना जैसे ही शुरू किया तो वहां कुत्ता भौंकने लगा। अब कुत्ता भौंकने लगा तो यहां पर इनकी जो पत्नी थी वो कहने लगी, अरे कुत्ता क्यों भौंक रहा है, वो तो उसका ही गाय है, वो लेकर जा रहा है, कुत्ता भौंकने की क्या बात है। तो उसके पति देव कहने लगे, अरे भाग्यवती ये दूध जो था वो कुत्ता पी रहा था इसलिए वो भोंक रहा है, वही दूध अगर तू पीती तो उसके बदले आज तू भोंकती। तो अंततः गत्वा व्यक्ति जब किसी वस्तु के प्रति जब आसक्त हो जाता है तो वस्तु जब उसके हाथ से जब बिछड़ जाता है तो उनके लिए विलाप करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। तो भौतिक जो आसक्ति जो है, जो वास्तविक हमारी आसक्ति होनी चाहिए कृष्ण के प्रति, लेकिन वो ना होकर किसी अन्य वस्तु के प्रति या अन्य व्यक्ति के प्रति जब आसक्ति को जब हम दर्शाते या वो जब हम किसी पर थोपते हैं तो अंततः गत्वा परिणाम दुख होता है, कष्ट होता है, और वही दुख उसे कमजोर बना देता है। जैसे चाणक्य पंडित बताते, दारू भेद निपुण षडंद्री, एक षडंद्री के हाथ में ऐसी शक्ति है, उनके बस में ऐसी शक्ति है कि दारू भेद, दारू को भी भेद कर सकता है, एक लकड़ी को भी भेद कर आर पार निकल सकता है। ये षडंद्री के पास शक्ति है, उनके पास विशेष प्रकार का ड्रिल मशीन है जो आर पार कर सके। लेकिन वही षडंद्री जब कमल के पंकज कोष, एक कमल के पुष्प में जब जाकर बैठता है तो उसके सुगंध में वो इतना आसक्त हो जाता है, जिस आसक्ति से वो अपनी शक्ति को खो देता है, और वही शक्ति को खो देने के द्वारा वो ये भूल जाता है कि मुझे इसको भेद करने की भी शक्ति है। और वैसे वो उसी कमल के पंखुड़ियों में दबकर अपने प्राण को गवा देता है। तो अंततः गत्वा वो कमजोर बन जाता है। तो जब व्यक्ति अपने जीवन में जब किसी भौतिक वस्तुओं के प्रति जब आसक्त होते हैं तो वही आसक्ति उसे एक कमजोर अवस्था में डुबा देता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, श्रुत शूद्रम हृदय दौर्पल्यम, वो कह रहे जय श्री श्री राधा विधारी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो क्योंकि अर्जुन को कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कहां से, इस कलमश को तुम त्यागो, त्यागो ही पुरुष व्याघ्रा। जब अगर कोई जीव आत्मा अगर अपने जीवन में वास्तविक अपनी अगर शक्ति को अगर प्रकट करता है तो वो अगर अपने जीवन में अगर अपनी आसक्ति को कृष्ण के प्रति अगर बढ़ाता है तो वो सबसे व्याघ्र है, यानी कि वो शेर की तरह गर्जना करते हुए वो कदम बढ़ा सकता है। लेकिन वही आसक्ति उसकी जब अन्य वस्तुओं के प्रति होता है तब उसका परिणाम दुख और संकट होता है। लेकिन यहां पर जो आसक्ति हम देख रहे हैं कि ये वास्तविक आसक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो यशोदा मैया का जो आसक्ति है, यही वास्तविक हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान अपने भक्तों के पास कभी कभी इस प्रकार के क्रियाओं को कर देते हैं। जब अपने भक्तों के अंदर जब भगवान को जब भक्ति की तीव्रता को बढ़ाना होता है तो भगवान कभी कभी गायब हो जाते हैं। तो यहां पर भी यशोदा मैया अन्य वो भी शोकाकुल में डूब गए, लेकिन वो उसके लिए लाभ के लिए है। अब भौतिक स्थितियों में जो व्यक्ति शोक में डूब जाता है, भय उत्पन्न होता है, उनके अंदर भय रहता है कि वो वस्तु मुझसे खो ना जाए। लेकिन यहां पर यशोदा मैया और अन्य गोपियों के हृदय में जो भय उत्पन्न हुआ है ये लाभदायक है। तो भय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, भौतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, दोनों में भय माना, दोनों में भय दिखता है। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि में या आध्यात्मिक तौर से जो भय होता है वो उसके लिए कृष्ण भावनामृत में प्रगति कराता है, और भौतिक भय है वो उसे और कमजोर बना देता है। तो जैसे आध्यात्मिक भय कि उसे भक्ति में कैसे प्रगति कराता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने के पहले, श्री बलराम जी के प्राकट्य होने के पहले 6 पुत्र का जन्म हुआ, तो जहां पर कंस ने बारी बारी से सारे 6 पुत्रों का वध कर दिया, तो वहां पर वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि देवकी माता को तुलना किया गया भक्ति के साथ, और देवकी माता के गर्भ में जो 6 पुत्र जिन्होंने जन्म लिया उनकी तुलना की गई है 6 अनर्थ के साथ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। अब ये जो 6 अनर्थ का जो वध करने के लिए कौन आए थे, कंस आया था। तो यहां पर जब कंस के द्वारा उनका वध किया गया जब तब जाकर श्री बलराम जी का प्राकट्य हुआ, और श्री बलराम जी कौन है, गुरुदेव। तो 6 अनर्थ जब हमारे हृदय से जब नष्ट होता है तब गुरुदेव का प्राकट्य होता है हृदय में, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में आगमन होते या प्रकट होते हैं। तो कंस के द्वारा वो 6 पुत्र का वध करना है, कंस यानी कि कौन हुआ, जो कि कंस ने इनका वध किया। कंस मतलब कौन, कंस का अर्थ है भय। अब कंस यहां पर कंस की तुलना की गई है भय के साथ, क्योंकि भक्ति में जब व्यक्ति आता है तो शुरुआत में जब भक्ति में आता है तो 6 अनर्थ के साथ आता है, तो जिसको कहते हैं न्यू भक्त, शुरू शुरू में उसकी भक्ति ऐसी रहती है। तो शुरुआत में भक्ति में आता है तो वो 6 अनर्थ के साथ लड़ता भी रहता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य के साथ। अब वो लड़ता भी रहता है साथ साथ में भक्ति का भी, भक्ति में अग्रसर होने के लिए भी प्रयास करता है। तो उसका दोनों दो कार्य होता है, एक है संघर्ष अनर्थों के साथ युद्ध करना, दूसरा है भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाना। तो ये दोनों कार्य चलता रहता है साथ साथ में। तो ये जो अनर्थ के साथ जब युद्ध करता है तो वो अनर्थ का नाश कब होता है, जब वो अपने हृदय में भय को बढ़ाता है। तो भय किस प्रकार का भय, वो है कि मेरे हाथों से कहीं भक्ति ना छूट जाए। ये ऐसे भय को जब व्यक्ति अपने हृदय में जब बढ़ाता है तो वही भय क्या करता है, वो उस अनर्थ का नाश करता है। तो वैसे अनर्थ का नाश करने के लिए उसको पहला इस भय को बढ़ाना है, और वो भय क्या है कि यह भौतिक जगत बड़ा दुखालय है। और वैसे ही व्यक्ति इस भय को बढ़ाते हुए कृष्ण के प्रति और अनुरक्तियों बढ़ा सकता है, कृष्ण के प्रति और आसक्ति को बढ़ा सकता है। तो यहां पर भय भी उसको लाभदायक हो जाता है। लेकिन जो भक्ति छोड़कर अन्य आध्यात्मिकवादी जो लोग हैं, जो ज्ञानी मार्ग पर या मायावादी जो लोग हैं, ये लोग अपने जीवन में भय को उत्पन्न न करने के कारण लोग गिर जाते हैं। क्या इन लोग ये नहीं देख पाते कि यह भौतिक जगत कितना दुखालय है, वो उस विषय पर वो कि ये जो मेरा जो मार्ग है कहीं छूट जाएगा तो मेरे लिए क्या भयावह स्थिति होगी। वो ज्ञानी लोग वो या मायावादी लोग उस विषय पर चर्चा न करने के कारण वो लोग उस स्थान से गिर पड़ते हैं। लेकिन भक्त लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, और वो क्या, भय को बढ़ाना कि कहीं मेरे हाथ से कहीं ये जो सुगम जो मार्ग है वो कहीं छूट ना जाए। और वैसे ही भय उसे कृष्ण के प्रति और लगन बढ़ाता है। वैसे ही यहाँ पर हम यशोदा मैया और अन्य गोपियाँ उनकी जो अवस्था देख रहे कि उनके हृदय में भय उत्पन्न हुआ, लेकिन भय से वो लोगों के उन लोगों के हृदय में कृष्ण के प्रति और अनुरक्ति और उनके प्रति प्रेम उन लोगों के हृदय में और जागृत हुआ। और ये कृष्ण इस प्रकार अपने भक्तों के जीवन में करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि किस प्रकार इनके अंदर अब भक्तों के अंदर और भगवान का स्मरण बढ़ाए। तो भगवान ऐसे ही अपने भक्तों के जीवन में ऐसे ऐसे संकट और मोड़ दे देते हैं, तो वैसा भय उसके लिए लाभदायक हो जाता। मगर जो भौतिकवादी लोग जो अन्य वस्तुओं के प्रति आसक्त होकर भय को जो प्रकट करते हैं या वो भय जो निर्माण होता है वो उसको कष्टी देता है। चाणक्य पंडित ऐसे भय को 6 प्रकार से वर्णन करते हैं और ये 6 प्रकार के विभिन्न प्रकार के भय हैं। तो बताते हैं, भोगी रोग भयापहम कुलचित भयम, वित्ते नृपालत भयम, माने दैन भयम, बले रूपी भयम, रूपे जराया भयम। ये 6 प्रकार के भय जो भौतिकवादी लोग अपने हृदय में, उन लोग इसके शिकार होते हैं इस 6 प्रकार के भय से, क्योंकि वस्तुओं और कृष्ण को छोड़कर अन्य वस्तुओं और व्यक्ति के प्रति आसक्ति होने का परिणाम ये होता है। तो चाणक्य पंडित ये 6 के विषय में कैसे वर्णन करते हैं, भोगी रोग भयापहम, जो भोगी होता है उनको हमेशा डर रहता है कहीं मुझे रोग ना लग जाए। जैसे कि कोई अगर नशा करने वाला व्यक्ति है तो नशा करने वाला व्यक्ति को हमेशा भय रहता है कि कहीं मुझे कैंसर ना लग जाए या कैंसर की बीमारी ना लग जाए। तो भोगी रोग भयापहम, तो रोग के भय से वो कभी कभी वो भोग की वस्तु को भी भोग नहीं पाता। जैसे हम किसी को कहते हैं कि देखो ये नशेली पदार्थ में भी चाय आता है, चाय पीना बुरी बला है, उसे नहीं पीना चाहिए, मगर कभी कभी लोग नहीं सुनते। लेकिन जब उनको ये खबर होता है कि डायबिटीज हो गया है, डॉक्टर ने मना किया है, तो तब से छोड़ देते हैं। तो उनके अंदर वो जो भावना जो है वो कहां से आ जाती है, क्योंकि रोग के भय से। एक व्यक्ति था, उनके अंदर मिठाई खाने की खूब इच्छा थी और उन्होंने मुंबई में आकर वड़ा पाव का धंधा डाला और जिस वड़ा पाव के धंधे में खूब मुनाफा हुआ, और हुआ यूं कि एकाएक उनको चिकित्सक के पास जाना पड़ा। चिकित्सक ने कहा कि तुम्हें डायबिटीज हो गया है, इसलिए आज के बाद नो वड़ा पाव। और जबकि पहले उसके पास पैसे नहीं थे मिठाई खाने के लिए, लेकिन अब भरपूर पैसे आ गया मगर इंद्रिया साथ नहीं दे रही है। तो अब क्या हो गया, भय उत्पन्न हो गया। तो भोगी रोग भयापहम कुलचित भयम, तो कभी कभी कुल के जो वासी जो होते हैं, जो कुल के जो मुख्य जो व्यक्ति होता है, उन्हें हमेशा डर रहता है कि हमारा कुल आगे चलता रहे। अगर कुल के अगर एक परिवार में एक ही लड़का है, वो अगर ब्रह्मचारी बन गया तो बड़ा घबराते हैं, और खास करके अगर वो भक्ति अगर थोड़ा ज्यादा करने लग गया तो और घबराते हैं कि कहीं हमारा कुल का जो आने वाला जो वंश है वो कहीं रुक ना जाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें बहुत सुंदर और सटीक उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि ऐसे ही एक व्यक्ति था जो अपने घर पर साधुओं को बुलाता था भोजन के लिए। तो लोग आते थे उनके घर पर भोजन के लिए, साधु लोग, मगर इनकी जो पत्नी थी बड़ी परेशान होती थी। ये क्या हमेशा साधु लोग को बुलाते रहते और मैं पका भोजन पका पका के पक गई, अब वो भी परेशान हो जाती थी। तो हुआ यूं कि ये इन्होंने कुछ युक्ति सोची और ऐसे हुआ कि 3 साधु लोग घर पर आ गए। अब 3 साधु लोग घर पर आए तो पति देव नहीं थे, तो ये 3 साधु जैसे ही आए तो इन्होंने कहा कि आपके पति देव ने हमें बुलाया था इसलिए हम आए हैं। तो इन्होंने कहा चिंता मत करो आप लोग बैठो, अभी पति कुछ समय के बाद आएंगे, आप बैठिए। तो उन लोग बैठ गए। अब जब बैठ गए तो ये इन्होंने क्या किया, अंदर जो चपाती बनाने का जो चिमटा होता है वो लाकर उन्होंने सोफे के नीचे रख दी। तो ये 3 साधु ने बोला ये चिमटा तो चपाती बनाने के लिए उपयोग करते, सोफे के नहीं, नहीं आप लोगों ने दे दिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, आप ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये मैं छुपा दी हूँ। ताकि आप लोगों को कष्ट ना हो। तो तीन साधु ने पूछा, मतलब देखो मैं आपको घुये बात बताती हूँ, ये बात आप मेरे पति देव के सामने जिक्र मत करना, नहीं तो मुझे खूब पीटेंगे। बोला नहीं, नहीं बताइए। बोला वो मेरे पति देव का एक आदत है कि वो ऐसे ही आपकी तरह अन्य साधुओं को बुलाते हैं और बुलाकर वो इसी चिमटे को लेकर अग्नि में खूब तपतपाते हैं और अग्नि में खूब तपतपाकर वो साधुओं का नाक पकड़ के यूं मरोड़ देते हैं। ले और मुझे बड़ा दुख होता है कि क्यों बेकार में साधुओं के साथ इस प्रकार। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने छुपा दी हूँ। अब ये सुनकर वो थोड़ी बात स्थित बैठेंगे। अब तीनों लोग आपस में फुसुर फुसुर किया उठ के जाने लगे। बोले अरे नहीं कहाँ जा रहे हो, रुको। तो बोले नहीं नहीं हम आ रहे और बोल के निकल गए। अब कुछ ही क्षण में उसके पतिदेव आए। बोले वो तीन साधु लोग क्यों जा रहे हो। बोला पता नहीं, उन लोग चिमटा मांग रहे थे, मैंने ना बोल दिया एक ही हमारे पास चिमटा, मैं कैसे दूंगी। तो ऐसा बोल दिया तो उन लोग नाराज होकर चले। अरे तुम भी पगली हो, एक चिमटा देने के लिए तुम्हें इतना संकोच कर रहे हो, कहाँ है चिमटा। वो उठाया और भागे। अब ये तीन साधु देख रहे हो चिमटा लेके और भागे। अरे रुको रुको तुम्हारे लिए, नहीं नहीं वो तुम ही लो, हमें नहीं चाहिए। अब ऐसा भागा कि दोबारा कभी आया नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जब कोई घर का सदस्य भक्त बनने को जाता है तो उनके अन्य परिवार के सदस्य लोग जो है वो अनेक अनेक प्रकार के तरकीब ढूंढते हैं कि कैसे इसके भक्ति को रोक दिया जाए, अन्यथा अगर ये ऐसे ही भक्ति करता रहेगा तो कुल का जो आने वाला जो वंश रुक जाएगा, कुलचित्त भयम। फिर तीसरा बताते हैं वित्ते नृपालाद भयम। एक जो कंजूस व्यक्ति जो होता है उन्हें हमेशा भय रहता कि कहीं मेरे से धन छूट ना जाए, वित्ते नृपालाद भयम। पुराण में बहुत सुंदर इसके विषय में बताते हैं, कंजूस व्यक्ति के विषय में, कि कंजूस व्यक्ति कैसे भयभीत रहता है धन के प्रति। एक व्यक्ति था कंजूस, बहुत कंजूस था। तो उन्होंने उनके जब ससुर जब मर गए तो उन्होंने उनका अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए और उनका अंतिम संस्कार होने के बाद पिंडदान इत्यादि देना था। तो यहाँ पर एक वो सोच रहे थे कि मैं गंगा में कुछ बहाकर कुछ कर दूंगा, लेकिन किसी को कुछ दूंगा नहीं। लेकिन वहां पर एक ब्राह्मण आ गया और ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हारा काम बहुत कम पैसे में कर दूंगा, तुम मेरी बात मानो। बोला नहीं नहीं नहीं। बोले कितना। बोला जितना आप बोलोगे उतना। तो उन्होंने कहा मैं केवल 1 रुपया 25 पैसा दूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगा, तुम्हें मंजूर है। तो बोला ठीक है ठीक है। और 1 रुपया 25 पैसे के उनके साथ एग्रीमेंट फिक्स करके अब उन्होंने पिंडदान इत्यादि सब कर दिया। और फिर सब करने के बाद उन्होंने कहा अब दीजिए। तो बोला नहीं अभी क्या है कि हमारे हमारे घर में बहुत अपशुगन समय चल रहा है, तो ये अपशुगन समय टल जाएगा तो फिर आपको देना ही है। तो बोले तो नहीं नहीं ऐसे नहीं। बोला नहीं ऐसे ही होगा, आपको और कोई रास्ता नहीं है। तो बोला ठीक है आपका घर का पता दो। तो घर का पता ले लिया। अब घर का पता ले लिया और वो समय बीतने के बाद जिस समय उन्होंने बुलाया तो उस समय गए। अब वहां पर गए तो वहां पर पता लगा कि ये ब्राह्मण आया है। अब वो दरवाजे के यहां पर ही खड़ा है। तो पत्नी आकर कहने लगी वो आया है। तो बोलो कह दो बीमार है फिर आने। तो इन्होंने आकर कहा मेरे पति तो बीमार है फिर आइए पैसे वसूल करने। बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब तक उनका बीमारी ठीक नहीं होता मैं यहीं बैठा रहूंगा। तो बोला वही बैठा है। फिर 1 घंटे के बाद वो परेशान हो गया तो ये कहने लगा अपनी पत्नी को खूब जोर से रोना शुरू करो और इतना जोर से रोना शुरू करो कि बस ऐसा रो कि मैं मर गया और चिल्लाकर बोलो मैं मर गया, हाय मर गया। तो ये सुनकर वो चला जाएगा। बोला ठीक है। तो चिल्लाने लगी हाय हाय मेरे पति देव मर गए, मेरे पति देव मर गए। अब वो चिल्लाने लग गए, रोने लग गए, अपनी चूड़ियां वगैरह तोड़ने लगी, अरे कहाँ चले गए, ऐसे सब रोकर गिड़गिड़ाने लगी। और ये तो ये सुन लिया ब्राह्मण ने, ब्राह्मण भी बड़ा शोक में हो गया, अरे रे ये तो मर गया। तो ब्राह्मण ने उसको कहा, उनकी पत्नी को, कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसे इनके ससुर का अंतिम संस्कार मेरे द्वारा हुआ वैसे इनका भी मैं करता हूँ। तो उसको लेकर गए, चर्चा दुबी में लकड़ी वगैरह सब रखा, अब फिर भी ऐसे पड़े जैसे कि बरा हुआ है, क्योंकि 1 रुपया 25 पैसे का सवाल था। अब जैसे अग्नि लगाया तो जैसे उसको चटका लगने लगा तो उठकर चिल्लाकर भागने लगा, ओ चटका लग रहा बोलकर। तो ये देखकर वो जो ब्राह्मण कोई और नहीं था, स्वयं भगवान थे, वो परीक्षा लेने के लिए आए थे, ये कंजूस व्यक्ति कितना बड़ा कंजूस है वो भी देखूं। और वो हंस पड़े, वही ब्राह्मण हंसते हुए अपने भगवान स्वरूप में जब, वही भगवान चतुर्भुज के रूप में जब प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण तुमने तो कंजूस की हद कर दी, और तुम्हारे इस कंजूसपन से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने देखा, रे ये तो ब्राह्मण और तो भगवान है। तो इन्होंने कहा, हे भगवान मेरा 1 रुपया 25 पैसा माफ कर दो। अब भगवान उनके सामने भी आ गए तो उनके अंदर ये विचार था, तो उन्होंने यही कहा। तो अब ये तो महाकंजूस निकला। तो वित्ते नृपाला भयम, तो ये तीसरे प्रकार का भय है। माने दई न भयम, जब किसी को समाज में सम्मान मिलता है तो उसे डर रहता है कि कहीं मुझसे बड़ा, कहीं मेरा ये सम्मान जो है कहीं समाज में छूट ना जाए। बले रूपी भयम, कोई बलवान व्यक्ति है तो वो हमेशा डरता है कि मेरे से कोई बलशाली व्यक्ति ना आ जाए। रूपे जराया भयम, किसी का रूप अगर सुंदर है तो उन्हें हमेशा डर रहता है कहीं मेरी सुंदरता कहीं छूट ना जाए। ऐसे 6 प्रकार के भय समाज में, जो व्यक्ति अन्य वस्तु के प्रति जब आसक्त होता है तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर इस प्रकार के भय उसे सताते हैं। तो कहीं उसके पास से वो कहीं वस्तु छूट ना जाए, ऐसे भय से। मगर यहां पर जो यशोदा मैया के चित्त में और अन्य गोपियों के हृदय में जो भय जो उत्पन्न हुआ भगवान श्री कृष्ण के छूटने के, वो वास्तविक भय उसे अनुकूल रूप में उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति की अनुरक्ति को और बढ़ाए। तो भय जो है वो व्यक्ति को केवल एक ही चीज से करना चाहिए, वो है भक्ति से, कहीं भक्ति मुझसे छूट ना जाए, तब जाकर उसके लिए वो भय उसे लाभदायक होता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट जल्दी खत्म किया, क्योंकि कल रथ यात्रा था। तो कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।